हम लोग अब 31 श्लोक को देख रहे हैं। तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अन्तः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। अब भगवान की सृष्टि में प्रवेश की लीला कर का वर्णन हो रहा है। भाई सृष्टि तो हो गई, चलाएगा कौन? चलाने वाला भी तो कुछ होना चाहिए ना। इंजन खड़ा हो गया लेकिन इंजन में कोई ड्राइवर नहीं है तो इंजन आगे कैसे बढ़ेगा, इंजन आगे कैसे बढ़ेगा? तो इसलिए किस प्रकार से भगवान, चलो मान लिया कि भाई सृष्टि करते समय माया से प्रभावित नहीं होते, लेकिन हो सकता है कि जब अंदर प्रवेश कर जाए तब प्रभावित हो जाए। तो यह श्लोक में हम सीख रहे हैं कि नहीं, भगवान इस जगत में प्रवेश करने के बाद भी प्रभावित नहीं होते। तो यह हम श्लोक का थीम समझ में आ रही। तया तो बड़ा स्पष्ट है, तया मतलब उनके द्वारा, विलसितेषु एषु गुणेषु, विलसितेषु मतलब इस यद्यपि कार्य में, या कार्य मतलब इस जगत की रचना में, विरचितेषु इस जगत की रचना करते हैं उस जो जगत रचित हो गया उसमें, सप्तमी है उसमें, एषु मतलब इस जगत में जिसकी रचना भगवान ने कर दी, गुणेषु जो गुणों से बना हुआ है उसमें प्रवेश, अंतः प्रविष्ट उसमें प्रवेश करने के बाद भी गुणवान इव, ऐसा लगता है कि वो गुणवान है, ऐसा लगता है कि गुणों के प्रभावित हैं। आभाती मतलब आभास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि भगवान भी भौतिक शक्ति से प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन विज्ञानेना अर्थात अपनी चित्त शक्ति के द्वारा विजृंभितः वह पूर्ण तरह से प्रकाशमान है। नहीं सुन, मैं सीधे सीधे बोल रहा हूं, भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं, वो जगत किससे बना हुआ है? गुणों से बना हुआ है। किसने उसकी रचना हुई है, तो इस रचना माया की, माया देवी के द्वारा जगत में रचना हुई, उसमें प्रवेश करने के बाद भी भगवान ऐसा लगता है कि गुणवान हो गए हैं, गुणों को स्वीकार किया हुआ है, लेकिन हमेशा भगवान अपने स्वरूप में स्थित रहते हैं, चित्त शक्ति के द्वारा, अपने आध्यात्मिक शक्ति द्वारा वह प्रकाशमान रहते हैं। ये बात तो यहां भी बताया जा रहा है कि भगवान जब प्रवेश कर रहे हैं इस सृष्टि लीला में, वो प्रवेश कर रहे हैं तब भी वह अपनी दिव्य स्थिति को बनाए रखते हैं। मेरे ख्याल से समझ में आ रही है बात। और आप देखिए, आप कहेंगे नहीं, हम तो नहीं सोचते हैं कि भगवान गुणवान है, हम तो नहीं सोचते कि भगवान भौतिक है। आप लोगों की संख्या कितनी है, या हम लोगों की संख्या कितनी है? अगर मैं कहूं कि भक्तों की संख्या जो समझते हैं कि कृष्ण गुणवान नहीं है पूरे जगत में, तो उसका शायद परसेंटेज देना बड़ा मुश्किल होगा। पहली बात तो बहुत से लोगों को तो यही विश्वास नहीं है भगवान है या नहीं है, तो गुड़ और ना गुड़ का कोई मतलब ही नहीं है, है कि नहीं? और फिर यह तत्व समझना कि भगवान कृष्ण निर्गुण है, ये नहीं समझ पाते। कितनी बार लोग ऐसा बोलते हैं कि राम या कृष्ण भगवान जो है उनको भगवान बना दिया गया, न अच्छे अच्छे कार्य किए तो उसको लोग उनको भगवान मानने लगे। तो इस प्रकार की भावना जो है, नहीं परम पुरुष नहीं बोलते, वह उनको महापुरुष बोलते। वैसे तो भागवत भी बोलती है वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम, लेकिन वहां महापुरुष की व्याख्या वैसी होगी जो निर्गुण है, ना कि इस जगत के कोई महान व्यक्ति। तो इस प्रकार से है। इसको ऋषभदेव भी बोलते हैं, इदम शरीरम मम दुर्विभाव्यम, जो मेरा शरीर है इसको समझना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, देह और देही, अगर देख पा रहे हैं उतना भी, अगर इतना भी देख पा रहे हैं तो भी कुछ ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर से भिन्न हूं। प्राय तो अपने आप को शरीर ही मान रहे हैं, तो जब कोई सोच रहा है कृष्ण, तो वही सोच रहा है कृष्ण का शरीर भी ऐसा ही होगा जैसे मेरा भौतिक शरीर है। इस प्रकार से लोग सोचते हैं, स्पेशली जब भगवान लीला करते हैं। तो जब भगवान की लीला हम समझना चाहें तो पहले हमको तत्व में समझना पड़ेगा कि भगवान कभी भी विकारी नहीं होते, माया की कोई शक्ति उनको प्रभावित नहीं करती है। समझ रहे हैं? इसे ये भी समझ लेना चाहिए कि भगवान इस जगत में प्रवेश करने और बाहर निकलने में कोई रोक टोक नहीं है, माया कोई प्रभावित नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। भौतिक पदार्थ की उत्पत्ति करने के बाद, जगत सृष्टि करने के बाद, विलसितेषु भगवान वासुदेव अपना विस्तार करके उसमें प्रवेश करते हैं। यद्यपि वे विस्तार करके प्रवेश करते हैं, मतलब गर्भोदकषाय विष्णु, क्षीरोदकषाय विष्णु इत्यादि, यद्यपि वे प्रकृति के गुणों में रहते हुए उत्पन्न जीवों में से एक जैसे लगते हैं, किंतु वे सदैव अपने दिव्य पद पर पूर्ण रूप से आलोकित रहते हैं। वे अपने स्वरूप से कभी नहीं गिरते हैं। उनका नाम एक है अच्युत, जो अपनी स्थिति से कभी नहीं गिरते। तात्पर्य प्रभुपाद समझा रहे हैं, जीवात्माएं भगवान के विभिन्न अंश प्रत्यंश हैं, और जो बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक नहीं है, उन्हें इस भौतिक जगत में डाल दिया जाता है, जिससे वे जी भरकर पदार्थ का भोग कर सकें। इंग्लिश में अगर आप इसके तात्पर्य को पढ़ेंगे तो प्रभुपाद जी कहते हैं, द लिविंग एंटिटीज आर स्ट्रूवन इन दिस मटेरियल वर्ल्ड। स्ट्रूवन समझते हैं, स्ट्रूवन मतलब होता है जैसे आप कुछ छिड़कना, यह शब्द होना चाहिए था, जीवों को इस जगत में छिड़क दिया जाता है। यहां पर शब्द यूज किया है डाल दिया जाता है, लेकिन डाल दिया जाता है वो उस अर्थ को नहीं प्रकट कर रहा जो प्रभुपाद जी कहना चाहते हैं। स्ट्रूवन समझते हैं, डालना मतलब होता है इकट्ठा सबको डाल दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं स्ट्रूवन, स्ट्रूवन समझते हैं ना, इंग्लिश समझे तो छिड़कना। हर व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार और देवतंत्र के अनुसार अलग अलग योनियों में छिड़क दिया गया। यहाँ एक छिड़क इसलिए बोल रहे क्योंकि हम लोग अणु हैं, तो छोटे छोटे बूंदे जैसे छिड़की जाएंगी, उस प्रकार से कोई यहाँ छिड़का हुआ है, कोई वहां छिड़का हुआ है, कोई स्वर्ग गया है, कोई नरक में गया, इस तरह से अलग अलग स्थितियों में छिड़क दिया गया है। कितना सुंदर प्रभुपाद जी का वो वाक्य है। दूसरा बद्ध, अच्छा एक प्रश्न है, बद्ध जीवात्माएं आध्यात्मिक जगत में रहने लायक क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी भौतिक इच्छाएं। इसको और स्पष्ट कीजिए, माइक में बताइए अगर अच्छा रहेगा। एक मिनट, डिसिप्लिन रहे, हम लोग आध्यात्मिक जगत में यहाँ पे भगवान की कथा, भगवान की बात कर रहे हैं, एक एक करके बता सकते हैं। अगर सही उत्तर आ गया तो कोई बात नहीं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। यस,
क्योंकि हमारे अंदर बहुत भौतिक इच्छाएं हैं, इसलिए
हमारे अंदर बहुत सारी भौतिक इच्छाएं हैं। ठीक है, ये सही उत्तर है। और कुछ क्लियर कीजिए, भगवान से अलग रह करके, भगवान से विरुद्ध रह करके भोग करने की इच्छा। देखिए रूप वासना गलत नहीं है, लेकिन भगवान को देखने की इच्छा हो तो ठीक है ना। आप संगीत सुनना चाहते हैं, कोई गलत है? कोई गलत नहीं है, हरे कृष्णा सुनिए। आप भगवान की कथा सुनना चाहते हैं तो सबसे अच्छी भक्ति है। किसी के दूसरे के गुणों की चर्चा करने की इच्छा हमारे सब में प्रवृत्ति होती है कि नहीं, तो भगवान के गुणों की चर्चा कीजिए, भगवान के भक्तों के बारे में सुनिए, तो वह कोई गलत नहीं। भगवान से संबंध लेकर के हम सुख इच्छा करें तो कोई गलत नहीं है, भगवान से अलग रहकर सुख प्राप्त करने की इच्छा, अपने को केंद्र में रखने की इच्छा के कारण व्यक्ति योग्य नहीं रहता, और उसको यहाँ पे उसको छिड़क दिया जाता है भौतिक जगत में। हम लोग छिड़के हुए हैं, ठीक है, हमको वापस भगवान के पास जाना है। बड़ा बुरा लग रहा है ना, हम छिड़क दिया क्या? लेकिन हमारी गलती से, भगवान उसमें भगवान की गलती नहीं, छिड़का हुआ है ऐसे अलग अलग। ये प्रश्न हमेशा बना रहेगा कि मुझे भक्ति क्यों प्राप्त हुई? प्राप्त हुई मतलब एटलीस्ट ये भी कैसे पता चला कि इस भव भवाटवी इस जग इस भव सागर ने भव भवाटवी मतलब जंगल से बाहर निकलने का रास्ता भी कैसे पता चला? बड़ा इस पे आप मनन कर सकते हैं कि अरे भाई हम बाहर निकले नहीं हो, ये क्या भाग्य नहीं है कि बाहर निकलने का रास्ता मालूम चल गया? और कहीं कोई अप्रामाणिकता नहीं है, कहीं कोई झोल माल नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं कि हमारी बात विश्वास करो, क्यों विश्वास करें? क्योंकि हम हैं, हम बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं। प्रामाणिक शास्त्र हैं, आचार्य हैं। बाहर निकलना नहीं होता किसी को जंगल से, तो उसे रास्ता मालूम ही नहीं चलता, बस ये केवल चलते रहना। अब कोई कहे कि नहीं भाई बहुत समय हो गया पार नहीं हो पाया, तो अब रुकने का तो कोई प्रश्न बनता नहीं है। एक बात मैं थोड़ा कठोर बोलूंगा, आप लोग प्लीज कान बंद कर लीजिएगा। थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने कितने बड़ी कीमत चुकाई है ना इस जगत में, इसी जीवन में। जगत की बात छोड़ दीजिए, आप सब बुद्धिमान हैं, आप सब समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं। थोड़ी सी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कितना दुख भोगते हैं, मैं इसको बोले बिना नहीं रह पा रहा हूं। प्रहलाद महाराज की बहुत सुंदर उक्ति है, वो कह रहे हैं कि इस जगत में दो ही दुख हैं, जिन वस्तुओं को जिन व्यक्तियों को मैं पसंद करता हूं वह मुझसे छीन ले जाते हैं यद्यपि मैं नहीं चाहता, और जो वस्तु या व्यक्ति मुझे पसंद नहीं है वो मुझ पे थोप दी जाते हैं, यद्यपि मैं नहीं चाहता। कृपया इस क्लास में से ये बात जरूर याद रखिएगा, थोड़ा मनन कीजिए कि क्या ये हो रहा है हमारे साथ। कितनी कितनी सारी वस्तुएं हैं जो हम चाहते हैं हमारे हम पास रहे, कुछ नहीं तो कम से कम स्वास्थ्य तो चाहते हैं, वह भी छीन ले जाता है कभी कभी, और दुख नहीं चाहते थोप दिया जाता है। और बात यहां पे समाप्त नहीं होती है, इसको पूर्ण इसको निवृत्त इसे इस दुख से निवृत्त होने के लिए जो मैं साधन कर रहा हूं वो और दुख का निर्माण कर देते। तो इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं भगवान दास योग दीजिए, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, यही इनका इन दुखों की निवृत्ति का कारण है। जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी, कोई दुनिया की ताकत है क्या, कहते हैं किसी माई के लाल की ताकत है कि आपको भगवान से आपको हड़ाते, कोई ताकत है? हिरण्यकश्यप पूरी ताकत लगा करके प्रहलाद महाराज को रोक नहीं सका। एक बार भगवत भक्ति प्राप्त हो जाए कौन रोक सकता है? और अभी भी जो आप भक्ति कर रहे हो, किसी की ताकत है कि जबकि भक्ति को हटा दे छुड़ा दे? ये बहुत गंभीर बात है कि इस जगत में थोड़ी थोड़ी इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कितना बड़ा कीमत चुकाते हैं। खैर हम उधर नहीं जा रहे, लेकिन बस हम खाली ये बात कर रहे थे कि भगवान की आध्यात्मिक जगत में रहने के लायक नहीं है, तो हमें क्या करना है? अब रहने के लायक बनना है बस। और खाली इसके लिए क्या करना है? इच्छा का परिवर्तन। रहने के लायक बनने के लिए हमें क्या करना है? केवल रहने की इच्छा करनी है बस। आपको समझ में आ रहा? नहीं, भगवान के धाम जाने के लिए क्या चाहिए? इच्छा, और कुछ नहीं चाहिए। कोई पैसे नहीं लगेंगे? नहीं, केवल इच्छा। इतना इजी कैसे हो सकता है? ऐसे ही है, मैं क्या बोल रहा हूं, गीता में इसे लिखा है, माम इच्छाप्तुम धनंजय अभ्यास योगेन ततो माम इच्छाप्तुम धनंजय। भक्ति योग का अभ्यास करो, मुझे प्राप्त करने की इच्छा को प्राप्त करो, मेरे पास रहने के लिए तुम अग्री कर जाओ। वहां जाके क्या करना होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, वही करना होगा। तो उसी का हम अभ्यास कर रहे हैं, यही दिखा रहा है भगवान को कि हम आपकी पास आना चाहते हैं। जो लोग 16 माला कर रहे हैं, 4 नियम का पालन कर रहे हैं, तो क्या दिखा रहे हैं भगवान को? हम आपके पास आना चाहते हैं, बाकी सब काम तो भगवान कर देंगे। थोड़ा समझिए, जैसे हम भगवान से विरुद्ध रहना चाहते थे तो भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था कर दी, सर जागरे पूरा माया की सृष्टि ये वो कर दिया। अब जब भगवान के पास आना चाहेंगे तो क्या भगवान रास्ते में रोड़ा डालेंगे? नहीं नहीं, ये क्यों आया, उसे कैसे खिलाऊं मैं, पहले बहुत बच्चे हैं हमारे पास, यहाँ इतने सारे जीव हैं, इनको खिला नहीं पा रहा हूं मैं, अब ये कहां से आ गया? ऐसा तो नहीं है। तो इस प्रकार से भगवान बहुत, आप देखेंगे भगवान बहुत सुंदर बात प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर भक्त जानबूझकर पाप ना करे और भक्ति करता रहे तो भगवान सारी मदद करने के लिए तैयार है। ऐसे टू दैट इफेक्ट ऐसे बोलते हैं, मैंने शेयर किया था। तो भगवान हमारी मदद करने के लिए खूब तैयार हैं, हम उनके संग उनके दास योग में लगे, उनकी सेवा में लगे, ठीक है। तो बड़ा स्पष्ट है, क्यों किया? ताकि वह जी भरकर पदार्थ का भोग कर सके। परमात्मा के रूप में तथा जीवों के नित्य सखा के तौर पर भगवान अपने किसी एक पूर्ण अंश के द्वारा जीवों के साथ रहकर उनके भौतिक भोगों में पथ प्रदर्शक बनते हैं और उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। अब भगवान के यहाँ पे भोग लीला का वर्णन है, भोग लीला का वर्णन है मतलब भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विद्यमान है, उन्होंने ही इस जगत की सारी भोग की वस्तुओं का निर्माण किया, उन्होंने नहीं हमको इंद्रियां दी हैं जिसके द्वारा हम भोग करें, उन्होंने ही अहंकार की सृष्टि करी जिसके द्वारा हम अपनी पहचान शरीर से करें। क्यों किया? क्योंकि मैं भोग करना चाहता था भाई, भोग के लिए एक वस्तु चाहिए, इंद्रियों का विषय, मालूम मैं कुछ देखना चाहता हूं तो देखने के लिए विषय होना तो चाहिए ना, कोई रूप होना चाहिए, तो रूप की सृष्टि कौन किया? भगवान, ठीक। आंखें कौन दिया? इंद्रिय कौन दिया? भगवान। अब आंखें तो रूप को देख रही हैं, लेकिन यह मैं सोच रहा हूं कि मैं रूप को देख रहा हूं, तो यह अहंकार की सृष्टि कौन किया? वो भी भगवान ने करी। समझ में आया? तो ये भोग लीला चल रही है कि नहीं? क्या आप भगवान की लीला में हैं या नहीं? अभी आप समझ में आ रही है? भगवान की सृष्टि लीला तो समझ में आ रही है, ये अभी जो भोग लीला चल रही है वो समझ में आ रहा है? देखिए, आपकी आंख रूप को देख रही है, लेकिन वस्तुतः ना ना ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं, यहां मुझे लग रहा था समझने में कठिनाई होगी। रूप है, इंद्रियां हैं। रूप का निर्माण भगवान ने किया, इंद्रियों का निर्माण भगवान ने किया, अहंकार भगवान से आया, मिथ्या अहंकार। अब इंद्रियां अपने विषयों के संपर्क में आ रही हैं, इसमें आत्मा का क्या है? कुछ भी नहीं है। लेकिन आत्मा भोग करना चाहती है, इसलिए मिथ्या अहंकार की सृष्टि के द्वारा हमारा भगवान अभिनिवेश करवाते हैं इस जगत में कि देखो तुम कितना सुंदर रूप देख रहे हो। अब समझ में आ रहा है? भोग तो मैं ही कर रहा हूं, लेकिन भगवान की शक्ति के बिना, ये परमात्मा की कृपा के बिना हम भोग भी नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी एक व्यक्ति को बोले कि अगर तुम्हें दारू भी पीना है, ये कोई एडवाइस नहीं है, प्रभुपाद जी ने एक जगह से बोला, तुमसे वाइन नहीं छूट रही तो ये भी स्मरण करो कि वाइन आई कहां से, गेहूं से या जो भी से आती हो, और वह गेहूं कहां से आया? भगवान से। तो उस प्रकार से तुम्हारा भगवान का स्मरण तो होगा। ये भगवान के स्मरण करने की स्टैंडर्ड टेक्निक नहीं है, लेकिन कोई अगर नहीं कर सकता है तो वाइन में भी भगवान को देखोगे, वाइन भी भगवान से ही आई है। प्लीज, मुझे शायद इसको नहीं बोलना चाहिए था, कुछ लोग कहेंगे अच्छा अच्छा प्रभु जी ने बोला वाइन पी सकते हैं और भगवान का स्मरण कर सकते हैं, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। लेकिन कोई नहीं छोड़ रहा है तो फिर, क्योंकि वस्तुतः हर हर चीज भगवान से आई, नहीं सर समझ में आ रहा है ना? और यानी मैं इसलिए बोल रहा हूं, भौतिक भोग में पथ प्रदर्शक बनते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो मेरी भौतिक इच्छाएं अपूर्ण रह गई पिछले जीवन में, उसका स्मरण भगवान इस जगत में फिर से कराते हैं कि तुम्हारी ये रह गई इच्छा, अब तुम उसको फिर से चालू करो। ये तो बड़ा स्पष्ट है, और केवल पिछले जन्म में नहीं। मान लीजिए आज प्रलय हो जाती है तो ब्रह्मा जी के एक रात्रि यानी कि जो 1000 चतुर्युग है उसके बाद फिर सृष्टि होगी, फिर जब सृष्टि होगी फिर भगवान मेरे को याद दिलाएंगे कि तुम्हारी वो इच्छा रह गई थी, उसके अनुसार शरीर देंगे और व्यवस्था करेंगे भोग की। एक बात बहुत गंभीर है, अगर हम भगवान की सेवा नहीं करते हैं तो भगवान ये कभी ज्ञान नहीं देते कि इंद्रियां बनाई किसने है। भगवान यह ज्ञान नहीं देते कि बेटा ये आंखें मैंने बनाई है, इसका आंखों का उपयोग मेरे लिए करो। जब तक किसी तरह से भक्तों के माध्यम से हम भगवान की किंचित मात्र कुछ सेवा ना करे हो, भगवान को प्रणाम नहीं करे, नाम जप नहीं करे, तो ये प्रश्न ही नहीं आए कि आंखें हैं किसकी किसकी, ये जीव किसने दी है, ये मन बुद्धि किसने दिया है। और जब हम भक्ति करते हैं, सुनते रहते हैं, तो समझ में आने लगता है अरे ये तो मेरी वस्तु है नहीं, ये तो भगवान की है, मुझे उनको देना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। इसीलिए ये सर्वश्रेष्ठ सेवा है कि लोगों को भगवान के बारे में बताया जाए, नहीं तो वो अनादिकाल से तो फंसे ही रहेंगे। और कितनी कुछ कुछ भी थोड़ी बहुत किंचित मात्र कोई सेवा कर दे तो भगवान फिर अब उसको और मौके देते चले जाएंगे। यही बात यहां पे बोल रहे हैं, उनके सारे कार्यकलापों के साक्षी रहते हैं। एक एक लाइन बहुत गंभीर है। देखिए हम यहां बैठे हैं, अगर बगल में कोई गाली गलौज करने लगे तो क्या आप उस कार्य के साक्षी हैं या नहीं है? हैं बाकायदा। कोई मर्डर करते, ऐसे बातें बोल रही चाहिए, कोई मर्डर हो जाए तो आप गंभीर हो जाएंगे ना। एक भक्त हमारे हैं वो कह रहे हैं अरे प्रभु जी मैं तो वो देख चुका हूं, क्या कहते हैं उसको, रायट्स क्या होते हैं, दंगे, दंगे में फंस चुका हूं। तो वह उस, हमने तो दंगे सुने हैं, दंगे के वो साक्षी रह चुके हैं, वह संस्कार उनके चित्त पे बना हुआ है, वो उनको भय होता है सुन करके कि मैं मर जाता किसी तरह बच गया ऐसे करके। अब भगवान क्या उस दंगे के साक्षी नहीं है? भगवान सारे दंगों के साक्षी हैं, लेकिन भगवान निर्लिप्त रहते हैं। अंतर देख रहे हैं कितना अंतर है? कहीं कहीं भक्ति हो रही है तो कुछ भी, कुछ भक्ति तो नहीं कहूंगा मैं, कुछ भी और कार्य भौतिक कोई भी कार्य लोग गंदे से गंदा काम कर रहे हैं या पुण्य कर रहे हैं पाप कर रहे हैं, सबके भगवान साक्षी हैं कि नहीं, लेकिन भगवान उससे प्रभावित नहीं होते। कितनी अद्भुत बात है। इस बात को टीका में गीता में भी बोला गया कि जिस प्रकार से आकाश में सब कुछ स्थित रहता है, आकाश समझते हैं स्पेस में, लेकिन आकाश निर्लिप्त रहता है, यथा आकाश तो नित्यम वायु सर्वत्र गो महान तथा सर्वाणि भूतानि मस्थानी उपदा रहा। जिस प्रकार से आकाश में महान वायु व्याप्त रहती है, इसी प्रकार से सारे जीव मुझ में रहते हैं। तो कहेंगे हाँ हाँ अब समझ में आ गया, जैसे आकाश निर्लिप्त रहता है वैसे आप भी निर्लिप्त रहते हो, हमें समझ में आ गया। कहते नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि आकाश अजीवित वस्तु है, वह निर्जीव वस्तु है, उसके लिए निर्लिप्त रहना स्वाभाविक है कि नहीं? ये करताल मुझे थोड़ा आ सकते, लेकिन जिसकी चेतना होती है वे आसक्त हुए बिना नहीं रहता। तो भगवान सर्वज्ञ हैं, चेतना से युक्त हैं, फिर भी वह आसक्त नहीं होते। ये भगवान का स्पेशल गुण है। आपने कभी देखा है कि कभी कभी देखिए हम सामान्य जीवन देखते हैं लेकिन शिक्षा बड़ी अच्छी मिल जाती है। एक छोटा सा ये मफलर का पैकेट आया जिसमें उसको भी आदमी थोड़ी देर बाद सोचता है शायद मैं इसका उपयोग कर लूं। आपने देखा है बहुत बार कचरे से भी आसक्त हो जाते हैं हम लोग, असली वस्तु में छोड़ दीजिए। तो जिसकी चेतना होती है उससे आसक्त हुए बिना रहा नहीं जाता। होता है कि नहीं जीवन में कचरा देखा हुआ बहुत सारी वस्तुएं घर में हैं जिसका कोई उपयोग नहीं है, आप उसको रखते नहीं शायद काम आ जाए। अरे बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है शायद काम आ जाए। लड़का गाली भी देता है तो भी कहता नहीं लड़का है हमारा आसक्त, आसक्ति है। तो हम लोग चेतना से युक्त हैं इसलिए आसक्ति को नहीं काट सकते। लेकिन भगवान इस जगत की पूरी सृष्टि करते हुए और पूरे दायित्व के संग, ऐसा नहीं कह सकते भगवान ने कुछ कमी रह कर दी इस जगत में, ठीक से पेड़ नहीं बनाए या गौएं नहीं बनाई, वो तो हम उनको गड़बड़ कर रहे हैं। भगवान ने बिल्कुल परफेक्ट बनाया लेकिन भगवान आसक्त नहीं है। क्या प्रमाण है? जिन लोगों ने भी घर है, घर बनाने में कितनी मेहनत लगती है, अपने हाथ से घर तोड़ेंगे? भगवान अपने हाथ से घर तो नहीं तोड़ेंगे, वो भी जो इंच इंच करके बनाया है बड़े मुश्किल से एक एक ईंट इकट्ठी करी है, वह तो बम तो नहीं गिराने वाले आप, कोई नहीं गिराएगा। लेकिन भगवान पूरी सृष्टि करते हैं, उसके बाद थोड़ा प्राणायाम करते हैं, क्या कहते हैं इसको, रेचक कुंभक पूरक पूरक करते हैं, सांस लेते हैं और पूरी जगत की सृष्टि खत्म हो जाती है। देखिए बिल्कुल दायित्व के संग करते हैं लेकिन फिर सब कुछ खत्म कर देते हैं, बिल्कुल अनासक्त हैं। तो इससे भगवान के दिव्य गुण हैं जो हम सीख रहे हैं। एक और बात है, कार्यकलापों के साक्षी क्यों रहते हैं, इसमें बहुत अच्छी बात यह है कि कहीं इस जीव ने मेरे प्रति उन्मुख होने की इच्छा कर ली तो वह इच्छा अननोटिस्ड न रह जाए। कदाचित उसने कुछ भक्ति कर ली, कहीं कीर्तन में आके नाच लिया या भगवान का प्रसाद पा लिया, किसी तरह से कुछ भक्ति करते, भगवान लगे रहते हैं कि भोग तो कर रहा है, भोग कहीं में कहीं कदाचित थोड़ा योग हो गया उसमें तो मैं उसे खींच लूंगा। जैसे शास्त्र में वर्णन है कि किसने एक बार भी हरि बोला है, क्या बोला है, हरि। किसने नहीं बोला यहाँ पे, आपने नहीं बोला, बोलिए बोला, छुप के बोला हरि। अच्छा तो अगर हरि बोल दिया, चाहे छुप के बोला चाहे मन में बोला चाहे कैसे बोल दिया, तो अब वह मुक्ति के पथ पे है। उसे कैसे समझेंगे, तुरंत मुक्त नहीं होता है, लेकिन अगर हम गलत रोड पे गलत दिशा में जा रहे हैं, विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो घूम गए, यहां तक कि हमको पता भी नहीं चला कि हम घूम गए। कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप, प्रभु जी को अनुभव होगा, आर्मी में जब युद्ध चलता है तो वो लोग अंधेरे में लाइट ऑफ करके गाड़ी चलाते हैं, होता है ना। तो हो सकता है ऐसी स्थिति में हो सगता है कि गलत रास्ते में पहुंचे और पता लगा उल्टा घूम गए, गाड़ी वापस उसी स्थान में चली जाए। ऐसा होता नहीं है लेकिन ऐसा हो सकता है। तो अंधकार वश अज्ञान वश भी कोई भगवान का नाम उच्चारण कर ले तो भगवान अब उसको मुक्त कर देंगे, मतलब अब वो रस्सी में आ गया है, अब उसे खींचना चालू करेंगे, फिर हरि बुलवाएंगे, फिर कृष्ण बुलवाएंगे, फिर मुकुंद बुलवाएंगे, ऐसे बोलते बोलते वह मुक्त होकर भगवान के धाम चला जाए। अब जानते हो जामिली कथा, उसको समझाने की जरूरत नहीं। जैसे नारायण बोल रहा था अपने बेटे को बुला बुला करके, तब भी उसके भक्ति के क्रेडिट्स पढ़ते चले जा रहे थे। तो अगर वो ऐसा नाम करने से भगवान के धाम की प्राप्ति होती है तो कोई बढ़िया से नाम कर रहा हो तो फिर क्या उसमें शक करना चाहिए। आप लोगों के प्रेरणा के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये प्रभुपाद जी के वाक्य हैं, कहते हैं जिस भक्त ने दीक्षा लेकर के हरि नाम कर रहे हैं अगर वैष्णव का अपराध ना करे तो उसका भगवत धाम जाने का रास्ता एकदम क्लियर है, ना कोई टॉल ना कोई स्पीड ब्रेकर, ना कोई टॉल ना, ये तो मैं जोड़ रहा हूं, लेकिन उनका एकदम रास्ता खुला हुआ है, कोई टॉल भी नहीं है कोई स्पीड ब्रेकर भी नहीं, धाए 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 करके एकदम प्रगति करता चला जाएगा। ठीक है। तो कार्यकलापों के साक्षी और पथ प्रदर्शक मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा कि क्यों भगवान को करते हैं। जहां जीवात्माएं भौतिक भोग करते हैं वहीं भगवान भौतिक वातावरण से प्रभावित हुए बिना अपने दिव्य पद पर बने रहते हैं। तो ये तो आप स्पष्ट है, जो जीव भोग कर रहा है उससे भगवान का कोई मतलब नहीं है, वो उस भोग से प्रभावित बिल्कुल नहीं होते। ऐसा नहीं कि अरे ये जलेबी खा रहा है मेरे को तो पूछ ही नहीं रहा मेरे से, मेरे को तो भोग लगाए, ऐसा कुछ भी नहीं है, है कि नहीं। जैसे प्रभु जी भी खीर खा रहे थे, अब मेरे को जुखाम है तो मैं नहीं खा सकता, प्रभु जी खीर बहुत अच्छी है, ये है वो है, तो अब मैं खाऊं नहीं लेकिन प्रभावित तो हो ही जाता हूं ना, अरे भाई अब खा नहीं पा रहा हूं, हो ही जाता है स्वाभाविक रूप से। तो लेकिन भगवान को उससे कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जब आप प्रेम से भगवान को कुछ देते हैं तो उस प्रेम से भगवान प्रभावित होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, ये भाव मत ले लीजिएगा कि जब भगवान को कुछ देते हैं तो भगवान उससे कुछ, अरे रुक्मणी जी की तो खीर इतनी अच्छी है, ये क्या खीर बना के ले गया, ऐसा नहीं सोचते। ये प्लीज ध्यान रखिएगा, हम कितने भी नगण्य समझते हैं, नगण्य हो, लेकिन हम जो भी सेवा करते हैं अगर ये भाव और आ जाए ना, भगवान मैं क्या दे सकता हूँ आपको, फिर भी आपकी कृपा से जो प्राप्त हुआ आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, आप स्वीकार करें, तो भगवान बहुत प्रसन्न होकर के स्वीकार करते हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भगवान भक्ति के प्रति अप्रभावित नहीं रहते, भक्ति से आकर्षित रहते हैं, है ना। कितने लोग नाम जप करने वाले, राधा रानी हरि नाम कर रही है, हरे कृष्ण मंत्र बोल रही है, तो फिर भी हम हरे कृष्ण बोलते हैं तो भगवान उसको अप्रिशिएट करते हैं। इस संबंध में बहुत सुंदर बात अभी मैंने सुना था कि एक जो महान व्यक्ति होता है उसके प्रति आप कुछ अच्छा करिए तो हमेशा याद रखता है और सोचता है कि मेरे प्रति जो ने अच्छा किया है उसका मुझे कुछ अच्छा करना चाहिए, है कि नहीं। ये गुण आप समझते हो कि नहीं समझते, आप लोग सब अच्छे डिवोटी हो, कोई आपके प्रति कोई अच्छा करता है तो आप नहीं सोचते कि मैं इनको क्या अच्छा करूं। जैसे हम अच्छा प्रसाद हम खिलाते हैं तो हम सोचते हैं हमें कुछ प्रवचन तो करना चाहिए, अच्छा नहीं खिलाएंगे तो हम कहेंगे हरे कृष्ण, हम चल जाएंगे वापस। नहीं नहीं, यहां तक कि आप देखो उन लोगों को भी आप भक्त बनाना चाहते हो जो उन्होंने आपके प्रति कुछ भी नहीं किया, यह भी भावना रहती है। तो सोचिए भगवान कितने अच्छे व्यक्ति हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने कोट किया था कि भगवान अपने भक्त के वृत्तस्य, श्लोक भूल रहा हूं, अपने भक्त के अपने दास के बड़े बड़े अपराध को नहीं गिनते हैं और वो थोड़ी सी भी सेवा करता है, सेवाम अपि मनाग बहुमा बहुदा विपैति, बहुत मानते हैं थोड़ी सी सेवा किया है तो। कोई व्यक्ति भगवान के प्रति क्रोधित भी होता है तो भी भगवान उसे अपना दुश्मन नहीं मानते। शीलेन निर्मलमति पुरुषोत्तमोयम, ऐसे पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण है, तो ऐसे भगवान की हम सेवा कर रहे हैं। मैं खाली ये बात कह रहा हूं कि हम भगवान हमेशा दिव्य पद पे रहते हैं, वह जगह जीव अगर उनसे द्वेष भी करता है तो भी भगवान उनसे द्वेष कभी नहीं करते, उसका हित का ही सोचते हैं, और अगर कदाचित सेवा कर दिया तो फिर तो कहना ही क्या। हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हरे कृष्ण मंत्र करने से भगवान कितना प्रसन्न होते हैं। एक लीला सुनिए, महाप्रभु जा रहे थे, एक धोबी कपड़ा धुल रहा था, महाप्रभु ने कहा आप हरे कृष्ण करो। अरे कहा मैं हरे कृष्ण करूंगा तो कपड़ा कौन धुलेगा, तो कह रहा मैं धुलता हूं, कपड़ा धुला महाप्रभु ने, तुम हरे कृष्ण करो। ये हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं भगवान ने कितने से छोटे से कैप्सूल में इस हरे कृष्ण मंत्र में हमारी मुक्ति का सारा साधन देकर रखा हुआ। तो जितना शक्ति हो करना चाहिए। आप सोचिएगा, कभी आप सोच लीजिए, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज हम मर रहे हैं तो हमने मान लीजिए आज शाम को, शाम तो हो गई, 9 बजे हम मर रहे हैं। ये सब बातें क्यों कह रहे हैं आप, लेकिन मान लीजिए 9 बजे मर रहे हैं तो हमने जो कुछ बहुत ही किया से क्या वैल्यू है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए पूरा जीवन उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत करिए उसको, लेकिन वास्तविक रूप से कोई वैल्यू नहीं। और सबसे अधिक वैल्यू क्या है कि भाई आज 16 माला हो गया कि नहीं, मतलब हृदय से बातें आ ही जाती है, वो भरा रहता है हृदय में कि क्या वैल्यू इन वस्तुओं की। हाँ, अगर उन वस्तुओं को हमने भगवान को समर्पित किया है तो ठीक है, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं उसकी, सब छूट जाता है यहां। खैर, भगवान नहीं प्रभावित होते। श्रुतियों में कहा गया है कि एक वृक्ष पर 2 पक्षी हैं, कोट फुटनोट दिया गया है, 2 सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्षम परिश्व सजाते तयोर अन्य हो पिपलम स्वाद्वत्तन्य शकन्यो शन अन्यो भी चाक्षीति। मैं श्लोक का अभ्यास नहीं किया हूं, मैं बोल नहीं पाया ठीक से, अर्थ इसमें लिखा है इनमें से एक वृक्ष का फल खा रहा है और दूसरी उसकी गतिविधियां देख रहा है। ये मैं समझता हूं भक्ति वृक्ष में भी आपने सीखा था, याद आ रहा है ना, 2 पक्षी हैं, एक तोता बना है, भगवान स्थानीय है, एक तोता है जीव स्थानीय, तो जीव फल खा रहा है और भगवान देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है, ऐसे कर। जब भी मैं बोलता हूं जीव, तो आप ही मत सोचिएगा कि मानव योनि में, अब देखिए मैं थोड़ी खराब सी बात बोल रहा हूं, मान लीजिए किसी को आप लड्डू पेड़ा खाते हुए देखेंगे तो फिर भी शत प्रभावित ना हो, कोई मल खाते हुए देखें तो क्या। अब देखिए बोल रहा हूं तो आप कहेंगे अरे क्या है, लेकिन जब सुअर के शरीर में भगवान रहते हैं उस जीव के संग, तो जीव तो कहता है मल बहुत सुंदर चीज है, लेकिन भगवान उसे कोई प्रभावित नहीं होते। कितने अच्छे मित्र हैं, मैं सुअर के शरीर में भी जब था तब भी भगवान हृदय में थे, मच्छर था तब भी विश्वास हो रहा कि हमें कभी एक समय में हमें क्या वस्तुएं खाने अच्छी लगती थी, ये भी चेतना थी हमारी एक दूसरे से. लेकिन भगवान कभी नहीं चुन, ऐसा कुछ भी हम नहीं कर सकते कि भगवान हमारे हृदय से चले जाए. हमें तो भगवान वो कार्य करने हैं जिससे भगवान हमारे हृदय में आए रहे कथा सुनने से. ठीक है, सोचिए अगर ऐसे भगवान को सबसे अच्छी लगने वाली वस्तु का आप करेंगे तो फिर क्या कितना कृपा होगी. भागवत सुनना, भागवत पढ़ना भगवान को सबसे अच्छा लगता है भक्त करते हैं तो. भगवान का नाम जप करते हैं भगवान को सबसे अच्छा लगता है. भोग लगाते हैं, सेवा करते हैं भगवान को सबसे अच्छा लगता है. जब इतने मूर्तापूर्ण कार्य किए हैं तब भगवान हमसे उद्विग्न नहीं हुए, तो अगर हम भगवान की भक्ति करेंगे तो कितना आशीर्वाद होगा. बुद्धि का बड़ा महत्व है भक्ति में, तब हम महत्व देते हैं भक्ति के कार्यों को. जैसे हमारे प्रभु जी रात में जग करके भजन कर रहे हैं, तो गोलियां तो आप वहां पे भी चलाए थे ना, क्या नाम से, आपके फ्रंट पे भी चलाए होंगे, और सारी गोलियां के दिन में चलाई, रात में भी फाइटिंग हुई कभी? तो अब रात में कहेंगे नहीं मेरी ड्यूटी नहीं है रात में चलाने का, मैं रात में नहीं जग सकता. तो सरकार तो ये एक्सपेक्ट करती है कि रात में भी चलाओ और दिन में भी चलाओ, है कि नहीं. और वहां तो हो सकता है गोली खत्म हो जाए, लेकिन हरे कृष्ण मंत्र की गोली तो कभी समाप्त नहीं हो, है ना. 108 गोलियां तो हमेशा बची रहती है उसमें, एक माला तो हमेशा बची रहती, जितना चाहो उतना चला. और अद्भुत बात है कि गोली हमेशा लगती है, ये भगवान को चरणों में पहुंच ही जाता है हरे कृष्ण मंत्र कैसे न करके. ये भी एक रिफ्लेक्शन था भाई, आप जिसका नाम पुकार रहे हैं आपका मन कहीं पे भी हो, लेकिन जिसका नाम पुकार रहे हैं वो तो सुन ही रहा है, वो तो नोट कर रहा है इतनी बार उसने मेरा नाम लिया. ठीक है, वो सब देख रहे हैं. वह साक्षी, यह साक्षी भगवान है और फल को खाने वाला पक्षी जीवात्मा है. ये बड़ा स्पष्ट है, इसको समझते हैं. कर्म फल को भोगने वाला जीव है, भगवान उसमें निर्लिप्त रहते हैं. फल खाने वाला जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गया है. ये भी स्पष्ट है ना, हम अपने को नहीं समझ पा रहे कि हम कौन है. कर्म फल को भोग रहे हैं, विभिन्न भोगों में लग करके और अधिक अपने स्वरूप को भूलते जा रहे हैं, और भौतिक जगत के सकाम कर्मों में बुरी तरह व्यस्त है. अर्थात सकाम कर्म कर समझते हैं ना, भोग की इच्छा से प्रेरित होकर के जो कार्य किए जाते हैं, पुत्र चाहिए, धन चाहिए, या स्वर्ग चाहिए, इत्यादि जो भी इच्छाएं होती हैं सब सकाम कर्म कहे जाते हैं. और व्यस्त है, व्यस्त का मतलब भगवान की तरफ उन्मुख ही नहीं हो रहा, जबकि भगवान परमात्मा सदैव दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं. एक अद्भुत बात है कि भक्तों से शेयर कर रहा था इस बात को कि प्रायः लोग जगत में आपकी जैकेट देखते हैं, मतलब अच्छे कपड़े पहने, अच्छे व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहना है और अच्छा व्यक्ति है, ये संबंध कहां से आ गया? लेकिन होता है ना. हाँ, हम घर में गए थे, हमें बताया गया, हमें तो खाली सुनाई है इस बात को, और अच्छा है कि अनुभव नहीं है ना. चाहते हैं कि शादी तय करने से पहले लोग घर देखते हैं, भाई पैसे वाला है कि नहीं, और सब कुछ है कि नहीं, कपड़ा वा ठीक से पहनता है कि नहीं. लेकिन ये कैसे मालूम चलेगा कि लड़का ठीक है? मुझे हो सकता है उसमें त्रुटियां हो, स्वाभाविक है, मुझे डिटेल्स नहीं पता है. लेकिन क्या भगवान भी इसी प्रकार से हमारी जैकेट देखते हैं, हमारा शरीर देखते हैं? ये इस बात को, इस बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम श्लोक से सीख रहे हैं. मैं अपने ज्ञान को भूल गया हूं, तो क्या भगवान भी भूल गए कि आप कौन हैं? ये बहुत गंभीर बात है भाई. कोई लो कास्ट, तथा कहते जैसे कहते लो कास्ट है, हाई कास्ट है, यह सब तो चमड़ी है, चमड़ी की डेजिग्नेशन उपाधियां हैं. तो भगवान हमारी उपाधि को देखते हैं कि हमको देखते हैं? इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए भगवान कभी किसी से द्वेष नहीं करते, तो अपने बच्चे को देखते हैं. आपका बच्चा चाहे कोई भी ड्रेस पहना हो आपको अच्छा लगता है, हाफ पैंट पहना हो, चाहे वो गंदा पैंट पहना हो, चाहे कुछ भी पहना, ये बातें तो समझ ही रहे हैं आप लोग. उसी प्रकार से जो कोई भी भगवान के पास आता है, भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं. मैं कई बार उदाहरण देता हूं कि पूतना जैसी गुंडी का उद्धार कर दिया, बकासुर जितने सारे गुंडे थे सबका उद्धार कर दिया. जो कोई भी ब्रज में आता है भगवान उसको अपना मानते हैं. तो भगवान इवन भक्ति में भी जो आता है, इसको आप 12वें अध्याय के 20वें श्लोक में देखिएगा, जो भी इस भक्ति पद को स्वीकार करता है तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है. आप लोग उसको पढ़ सकते हैं. ठीक है, तो मैं खाली कहना था कि हम दिव्य ज्ञान से परिपूर्ण रहते हैं. अब हम अपन, सॉरी क्षमा कीजिएगा, परमात्मा, और मैं दिव्य ज्ञान को भूल जाता हूं, इस कारण से मैं लोगों को शत्रु देख रहा हूँ, मित्र देख रहा हूँ, लोगों की जैकेटें देख रहा हूँ, शरीर देख रहा हूँ, हाँ ये सुंदर व्यक्ति है, अच्छा व्यक्ति है, ऐसा है वैसा इत्यादि। भगवान इस प्रकार से नहीं देखते। यहां तक कि कोई पाप भी कर रहा है तो भी भगवान जानते हैं इस मूर्ख को पता नहीं कि ये क्या कर रहा है। ये समझ में आती है बात? आप लोगों के बच्चे हैं तब जानते हैं, बच्चे कभी कभी मुंह में चींटा रख लेते हैं, कभी आग को पकड़ने चलते हैं, कभी चक्कू मुंह में रखने का प्रयास करते हैं, तो आप क्या सोचते हो? नहीं करने देते तो एक अलग बात है, लेकिन अब जानते हैं कि जानता नहीं है। उसी प्रकार से जीव जो पाप कर रहा है वह केवल भ्रमवश कर रहा है। जीव को सुख चाहिए, हम सबको सुख चाहिए, लेकिन वो सोच रहा है कि यहां से भोग से सुख प्राप्त होगा। तो भगवान कभी द्वेष नहीं करते जीवों से, इसीलिए बार बार कह रहे हैं तुम सारे धर्मों को छोड़ के मेरे पास आओ, तुम पापात्मा भी होते हो, पापी भी, हमारे जीवन में पाप भी रहा हो, तुम मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा। कभी भगवान द्वेष नहीं करते। ये बहुत बड़ी संबल समझते हैं आप लोग, होप संबल आशा है हमारे लिए, आधार है, जिस कारण भक्ति करते रह सकते हैं। मैं सब बातें बोलता हूं, समझ लेते हो? ठीक, मतलब बोले जा रहे हैं और ठीक है। बहुत बहुत विचारणीय बातें हैं, भगवान कभी द्वेष नहीं करते हमसे। ठीक है, परमात्मा तथा बद्ध जीव में यही अंतर है। क्या अंतर है? बद्ध जीव अपने स्वरूप को भूला हुआ है, परमात्मा कभी नहीं भूलते। बद्ध जीव या जीवात्मा प्रकृति के नियमों के वशीभूत रहता है, जबकि परमात्मा भौतिक शक्ति के नियंत्रक है। ये तो स्पष्ट है, थोड़ा सा हम टीकाओं से देखेंगे, हम इसके बाद रुक जाएंगे। मेरे का से दो श्लोक हो गए, जैसे आप लोग चाहेंगे तो आगे पढ़ सकते हैं। अब श्रील श्रीधर स्वामी कहते हैं कि पिछले श्लोक में, तीसवें श्लोक में भगवान को जगत का कारण कहा गया, अब प्रवेश के नियम के लक्षण की लीला को कह रहे हैं। मतलब किस प्रकार भगवान इस जगत में प्रवेश करते हैं और इस जगत को नियम में रखते हैं। ये समझ में आ रहा है श्लोक में भगवान नियम में कैसे रखते हैं? सारे भोग की व्यवस्था बना रहे हैं, सब जीवों में प्रवेश कर रहे हैं और फिर भी वह निर्लिप्त रहते हैं। ये तो स्पष्ट समझ में आ रहा होगा। देखिए, अगर भगवान माया से प्रभावित हो जाते तो फिर वह नियामक नहीं रहते, हमारे जैसे हो जाते। तो इसलिए विज्ञानी ना विजृंभता शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है कि भगवान प्रवेश तो करते हैं और ऐसा लगता भी है कि वो गुणवान हो गए हैं, लेकिन वह जगत से प्रभावित नहीं होते, माया से प्रभावित नहीं होते। और उसके बाद कह रहे हैं कि इस जगत में, माया से उत्पन्न जगत में, वे आकाश के समान प्रतीत होते हैं। आकाश के समान प्रवेश करते हैं, मतलब सब कुछ आकाश में है, मैंने उदाहरण दिया था, लेकिन आकाश निर्लिप्त रहता है। अगर मैं कहूं कि आप आकाश की ओर देखिए तो कहां देखेंगे आप? कितना आसान उत्तर है ना, आकाश की ओर देखिए तो कहेंगे ऊपर की ओर। कल भी मैंने प्रश्न किया, कल या परसों किया था, तब भक्त ने नहीं बोला आकाश की ओर देखेंगे तो ऊपर की ओर। देखिए आकाश हर जगह है ना। तो ये देखिए, वो जो नीला रंग ऊपर दिख रहा है उसका आरोपण आप आकाश के ऊपर कर रहे हो। यही बात बोली जा रही है कि आकाश सब जगह व्याप्त है, तो ऐसा हम सोच रहे हैं कि भगवान भी गुणवान हो गए, गुणों से प्रभावित हो गए, जब भगवान यहां प्रकट होते हैं तो शायद वह भी गुण रूपी शरीर धारण करते हैं। ऐसा नहीं है। ठीक है, उसके बाद वो कह रहे हैं गुणवान शब्द पे कह रहे हैं, गुणवान अर्थात ये जितने भी गुण हैं, मद अधीना, भगवान के अधीन है। भगवान के अधीन ये सारे गुण हैं। और ऐसा लगता है कि भगवान इस अभिमान से युक्त हो गए कि वो ये गुण उनके हैं, लेकिन भगवान कभी इस प्रकार से नहीं प्रभावित। कहने का सिंपल है कि भगवान गुणों से प्रभावित नहीं होते, उनका नियमन करते हैं लेकिन दूर से करते हैं। उसके बाद वैसे कह रहे हैं, आप कैसे क्यों बोल रहे हो कि भगवान प्रभावित नहीं होते? तो विज्ञान है ना विजयता, अपनी चित्त शक्ति के द्वारा वह प्रकाशमान रहते हैं, उन्हें प्रभावित नहीं कर सकता कोई। एक टीका और मैं और बताना चाहूंगा गिरधर लाल जी की, बहुत ईजी है, समझ में आ जाएगा। प्रभु जी आज क्या खा के आए थे? आज बहुत बढ़िया प्रसाद मिला दोपहर में, इसलिए बहुत एनर्जी है बोलने की। वो कह रहे हैं कि भगवान इस जगत की सृष्टि के, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स कॉमन है लेकिन उसको हम रिपीट कर रहे हैं, भगवान जगत के कारण है पिछले श्लोक में कहा गया, और अब भगवान के प्रवेश की लीला को कह रहे हैं। अब वो कहते हैं भगवान अपनी माया से इस दृश्यमान जगत को, एशु, जो जगत आपको दिख रहा है, और जो गुणों का कार्य है, अर्थात गुणों के वजह से इसकी सृष्टि हुई है, और पंच महाभूत से बने हुए शरीरों में, जिसमें आप ब्रह्मा जी तक चले जाइए, सभी का शरीर पंच महाभूत से तो बना है, किसी में कुछ कम है, किसी में अधिक है। जैसे कि जो लोग सूर्यदेव सूर्यलोक में रहते हैं, वहां पर पृथ्वी तत्व नहीं होगा, लेकिन अग्नि तत्व रहेगा। तो जो भी जगत में इसकी सृष्टि हुई है, इसके पास शरीर है, वह इन पांच महाभूतों से ही बना, जैसे कि ब्रह्मा जी का शरीर बुद्धि से बना है। तो इस प्रकार के शरीरों में, यानी इस जगत में और इस जगत में जितने भी शरीर हैं, उन सब में अंदर प्रवेश करते हैं, ठीक है। और करते हुए भगवान निर्गुण रहते हैं, यद्यपि वह गुणवान प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है कि गुणों को वह स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन गुणों को स्वीकार नहीं करते। ये बात एक और तरह से समझिए, हमने आपको बताया था परमात्मा के द्वारा वह जगत के भोग की वस्तुएं प्रस्तुत करते हैं, ये इंद्रियों का संचालन करते हैं, तो लगता कहीं ना कहीं तो संपर्क आ रहा होगा, लेकिन नहीं, अपनी इच्छा से सारा कुछ उनके हो रहा है। जीव का जो भोग है, उसमें भगवान पूरी तरह निर्लिप्त रहते हैं, बस वाली देखते रहते हैं कि जीव किस प्रकार से भोग कर रहा है, और व्यवस्था करते रहते। एक उदाहरण से आप समझ पाएंगे, मैं समझता नहीं कि होटल में आप जाते होंगे, लेकिन कभी ना कभी जीवन में होटल में गए होंगे। तो होटल में जब जाते हैं, आप बोलते मेरे को डोसा चाहिए, मैनेजर को आप बोलते हैं मेरे को डोसा चाहिए, मैनेजर बोला ठीक है डोसा बना दो, तो मैनेजर खुद बनाने जाता है, तो जो कुक है वो बनाता है, तो कुक जो हो गया वो माया स्थानीय हो गई। कुकिंग कौन कर रही है? माया देव बना बना कर डोसे दे रही है हमको, विभिन्न प्रकार के भोग। इच्छा किसने करी? जीव ने। और भगवान देख रहे हैं कि इसको मिल जाए और उसका बिल पेमेंट हो जाए। बिल पेमेंट दिए बिना छोड़ने वाले नहीं है। तो यह भी हो जाए कि भाई तुम्हारा कर्म बंधन, भोग करोगे तो कर्म बंधन लगेगा, उसका प्रॉपर प्राइस तुमको देना पड़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि सब कुछ मैनेजर की अध्यक्षता में हो रहा है। मया दक्षिणा प्रकृति सुयते सचराचर, हम सब कुक बिना मैनेजर की आज्ञा के नहीं करने वाला। तो कहेंगे मैंने तो मैनेजर ने आज्ञा दी ना बनाने की, मैं बिल पेमेंट क्यों करूं? क्योंकि ऑर्डर आपने दिया सरकार, इच्छा आपकी थी कि डोसा दिया जाए। कोई डोसा कहेगा कि और अन्य वस्तु कह रहा, तो जैसे जैसे की इच्छा होगी वैसे वैसे कुकिंग हो करके आता रहेगा। मैनेजर उससे बिल्कुल निर्लिप्त है। या आप दूसरा उदाहरण जानते हो कि जज जो है वो किसी को बोले इसको बहुत पैसे मिलने चाहिए, इसको फांसी दे दो, उसको ये कर दो, और वो खुद किसी को फांसी नहीं दे रहा, किसी को धन नहीं दे रहा, लेकिन उसकी आज्ञा के बिना किसी को वस्तु में प्राप्त भी नहीं है। ये प्रभुपाद उदाहरण देते हैं। तो इस प्रकार से भगवान निर्लिप्त रहते हैं, लेकिन उनके बिना आज्ञा के कुछ नहीं होता। शायद स्पष्ट है बातें। और एक और अर्थ इसमें वो कह रहे हैं कि मतलब ऐसा लगता है कि जीव के समान वह भी शरीर वाले हैं। जैसे हमने बताया था भगवान कृष्ण के बारे में, लोग सोचते हैं कि यह भी गोपियों के संग लीला कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कृष्ण अच्छे अच्छे अवतार थे, लेकिन जब गोपियों का संग किया तो बिगड़ गए। तो इस प्रकार की धारणा वो रखते हैं भगवान के प्रति। और वो कह रहे हैं कि चित शक्ति के द्वारा प्रकाशमान रहते हैं, अर्थात जैसे जीव इस जगत में भोग करके अपने स्वरूप को भूल जाता है, आच्छादित हो जाता है जीव का स्वरूप, उस प्रकार से भगवान का स्वरूप कभी भी आच्छादित नहीं होता है। ये समझना चाहिए। तो सब बातें हैं भगवान के गुणों का हमने वर्णन किया। अब एक मिनट, कोई प्रश्न है किसी का यहाँ? था ठीक है, हम रुकते हैं। अब मुझे लग रहा है कि थोड़ा कीर्तन कर देना चाहिए।